ओम शांति। अभी गीत सुना। कोई जन्म से महान नहीं, कर्म से महान है। क्योंकि कई बार कईयों ने उच्च कुल में जन्म लिया है तो उनको नशा रहता है कि हम फलाने कुल के हैं, परंतु कितने भी ऊंचे कुल में जन्म लिया परंतु यदि कर्म अच्छे नहीं है तो क्या करते हैं हम कि इसने अपने कुल को कलंकित किया। तो इसलिए अपने तकदीर की लकीर हमारे हाथ में नहीं। कई बार हम समझते हैं भगवान हमारे तकदीर बनाते हैं, तो भगवान हमारी तकदीर नहीं बनाते हैं, हम खुद ही अपने कर्मों अनुसार अपनी तकदीर बनाते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि एक ही घर में यदि चार पांच बच्चे हैं, हर एक अलग अलग है, हर एक का स्वभाव अलग, हर एक के संस्कार अलग, हर एक के चॉइस अलग, और हर एक का लक्ष्य भी जीवन में अलग होगा। एक बच्चा कहेगा, एक भाई कहेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं सन्यासी बनूंगा, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूं, कोई कहेगा मैं पायलट बनूं। तो हर एक का लक्ष्य अलग अलग होता है। और हमने देखा भी है, देखो गांधी जी कितने महान हो गए, परंतु उनका एक भी बच्चा ऐसा नहीं निकला जो उसके समान हो। हाँ, उसके कुल का नाम बाला करे। तो इसी रीत से हम देखते हैं कि कोई है गरीब साधारण घर में जन्म लेते हैं, परंतु श्रेष्ठ कर्म करके महान बन जाते। कोई अपने जन्म के ऐसे संस्कार ले आते हैं, जैसे शंकराचार्य के बारे में सुनते हैं, बचपन से ही उनको वैराग था और संन्यास ले लिया। युक्ति रची कि नदी में उसको जैसे मगरमच्छ खींच रहा था, तो माँ को कहा कि आप मुझे छुट्टी दो, मैं संन्यास लूं तो ये हमको हमारी जान बच जाएंगी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। तो इसी रीत से देखते हैं कि जन्म से ही हम कुछ संस्कार ले आते हैं, कुछ हम आसपास के लोगों के सामने जो आते हैं उनसे कुछ सीखते हैं। कई देखेंगे जैसे माँ बाप है अपने बच्चों को संस्कार डालते हैं, तो कई तो जैसे माँ बाप गुस्से वाले होंगे तो बच्चे भी गुस्से वाले हो जाएंगे, परंतु कई ऐसे भी होंगे कि माँ बाप शांत होंगे बच्चे गुस्से वाले होंगे, या माँ बाप कितनी भी शिक्षा दे पर बच्चे उस शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं। तो हम देख रहे हैं वैरायटी मनुष्य आत्माओं में, वैरायटी संस्कार भी है तो वैरायटी कर्म भी करते हैं। अपने संस्कार अनुसार हम कर्म करते हैं, तो स्वभाव संस्कार हमारे कर्मों को फिक्स करता है कि क्या कर्म करें। किसका मीठा स्वभाव है तो सबको मीठा बोलकर सुख देता है, किसी का स्वभाव थोड़ा कड़वा है और ऐसे रफ डफ बोलते हैं, खुद भी दुखी होंगे औरों को भी दुखी होंगे ना। आप गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, पहले तो मैं खुद ही दुखी होंगी ना, पीछे औरों को दुख देंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हम जाने अनजाने अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। अब हम कर्मों की परिभाषा कैसे करेंगे, तो क्या है? एक है सत्कर्म, अच्छे कर्म, एक है दुष्कर्म और पाप कर्म, और एक है अकर्म। उसके अलावा भी जैसे गीता में बताते हैं निष्काम कर्म, तो इस रीति से हम देखेंगे अनेक प्रकार के कर्म होते रहते हैं। सत्कर्म किसको कहेंगे? जो हमारे अच्छे संस्कार वश हम औरों को सुख देते हैं। दुष्कर्म और पाप कर्म कैसे कहेंगे? चाहे कोई भी बुरा संस्कार हो, देखो आज अहम होगा तो हम क्या करेंगे, रोब दिखाएंगे ना औरों के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, उसको रफ डफ बोलेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, तो क्या होगा? अहम के कारण गुस्सा आएगा कि मैं बड़ा हूं तुम छोटा हो, मेरी कहनी तुमको माननी है, नहीं मानता हूं, मुझे गुस्सा करने का हक है। चाहे माँ बाप बच्चों के ऊपर, चाहे मालिक है नौकरों के ऊपर, चाहे बड़ी पोजीशन वाला है छोटी पोजीशन वाला, अपने अंदर जिसके अंदर काम करता है उसके ऊपर क्या करते हैं, गुस्सा करके काम कराते हैं। आजकल कई कई लोग ऐसे समझेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, लोग कैसे हमारा सुनेंगे, माँ बाप भी कहेंगे बच्चों को गुस्सा नहीं करेंगे तो अच्छी रीत से चलेंगे, थोड़ी चंचल होते हैं, माँ बाप गुस्सा भी करते हैं, मारते भी है, गाली भी देंगे। तो क्या है कि लक्ष्य माँ बाप का अच्छा है ना, कि बच्चों की चाल चलन सुधरे, वो अच्छी रीत से पढ़ाई पढ़े, अच्छे मार्क्स ले आवे, परंतु गुस्सा किया बच्चे को दुख होगा ना, तो क्या होगा? एक पहाका है, दुख देंगे दुख पाएंगे, सुख देंगे सुख पाएंगे। अर्थात कायदा है, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्म एक बीज है, वो हम बोते हैं, उसी अनुसार उसका फल सुख या दुख मिलता है या देते हैं ना। यदि दुख देंगे तो दुख पाएंगे। कर्मों की थियरी ऐसे ही कहते हैं, जो देंगे सो पाएंगे। तो इसलिए हमें देखना है कि चाहे काम क्रोध लोभ वश भी लोग क्या करेंगे, लोभ वश लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे, ठगी करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो ये क्या हुआ, पाप कर्म हो गया। आज की दुनिया में नहीं, कई लोग कहेंगे भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा धंधा कैसे चलेगा, हम फायदा कैसे करेंगे धंधे में, अपना घर कैसे चलाएंगे, परिवार कैसे चलाएंगे, इसलिए झूठ बोलते हैं। आपने वाल्मीकि की भी कहानी सुनी होंगी कि वाल्मीकि है अपने परिवार की पालना के लिए कईयों की चोरी करता था, मार पीटता था, पीटता था, खून करता था। तो एक सन्यासी वहां से आया, सियाणा आदमी, तो उसने कहा कि देखो तुम ये क्यों करता है, तो कहा मेरे बीबी बच्चों की पालना के लिए। तो कहा ठीक है, जरा बीबी बच्चों को पूछ के आओ कि ये जो तुम पाप कर्म करता है उसका फल वो भोगेंगे। हाँ, तो वो बीवी बच्चों को पूछने गया तो उन्होंने कहा आप करते हो, आपको भोगना है, हम क्यों भोगे। हाँ, तो क्या है, फिर वाल्मीकि को एकदम वैराग्य आ गया, उसने सब छोड़ दिया ऐसा धंधा अपना। तो इसी रीत से क्या है, जो करेगा सो पाएगा, जो बोएगा वो उसको उसका फल मिलेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, लोभ मास मोह वश भी हम क्या करेंगे। देखो किसी का किसी में मोह है, अभी माँ बाप का ही मिसाल लो, एक बच्चे में ज्यादा मोह है तो वो क्या करेंगे, उसका पक्षपात करेंगे, उसको ज्यादा अच्छी चीजें देंगे, उसके लिए ज्यादा खाना निकालेंगे, उसकी मनपसंद चीज उनको देंगे, तो दूसरे को दुख होगा ना, कहेगा मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती है। तो मोह के वश भी हम दुख लेते भी है, दुख देंगे भी ना मोह के वश। आज देखो आपका बच्चा बीमार होगा तो क्या होगा, बच्चे से भी ज्यादा आपको दुख होगा ना। हाँ? बच्चा तो कभी कभी बेहोश हो गया बीमारी के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण, माँ बाप कितने दुखी होते हैं, मोह है। तो इसलिए प्यार जरूर होना चाहिए, जब प्यार है तो हम उन्हों की संभाल करते हैं ना, बच्चों की संभाल माँ बाप को ही करनी है। तो इसलिए प्यार रखो, और प्यार में क्या है, दुख नहीं होगा। देखो आज डॉक्टर नर्सिस है, पेशेंट की कितनी प्यार से सेवा करते हैं ना, वो पेशेंट मर गया तो डॉक्टर दुखी होगा क्या, हाँ? रोएगा क्या, उसका खाना पीना बंद हो जाएगा क्या, नहीं, प्यार है। बहुत बहुत करके दो मिनट बेचारे कहेंगे कि मुझे बहुत दुख होता है, परंतु जैसा अपना ड्यूटी पूरी हुई अपना पर्स लेकर घर जाएंगे, वहां बैठकर रोते नहीं रहेंगे। लेकिन जहां मुंह है तो क्या है, सालों तक रोते रहेंगे, याद करते रहेंगे। उसके कारण कई बातें छोड़ देंगे। तो इसलिए मुंह के वश भी हम भी दुख पाएंगे, औरों को भी दुख देंगे। ईर्ष्या है तो भी जिसको ईर्ष्या है वो भी दुखी होगा ना, मन में कितना कितना दुख होता है कि इसको क्यों मान ज्यादा मिलता है, हमको मान नहीं मिलते, उसका सब प्रशंसा करते हैं, उसको आगे रखते हैं, हमको कुछ नहीं देते हैं, तो ईर्ष्या के वश भी दुख होगा। वैर है तो भी दुख होगा। तो कोई भी विकार है, आलस्य है, आलस्य है तो हम औरों को तकलीफ देंगे ना, जो आलसी व्यक्ति है अपना काम नहीं करेंगे तो दूसरे क्या होंगे, परेशान होंगे, नहीं कहेंगे हमको तो उसका काम भी करना पड़ता है, हमारा काम भी करना पड़ता है। तो कोई भी विकार है, उस विकार के कारण क्या होता है, खुद भी दुखी होंगे औरों को भी दुखी दें, और जो दुख देंगे फिर दुख पाएंगे, रिटर्न में वो ही होगा। आज किसी को हमने गाली दी वो क्या करेंगे, उसी समय सामने गाली दे देगा, उस समय नहीं देगा तो बुद्धि में याद रखेगा उसने हमको इतना गाली दिया है, जब भी चांस मिलेगा बदला लेगा। तो इस रीत से हम देखते हैं कि हमारे संस्कार स्वभाव अनुसार हम सोचेंगे, बोलेंगे और करेंगे, और जो करेंगे वैसा पाएंगे। तो इसलिए योग के द्वारा हमें अपना स्वभाव संस्कार को बदलना है, ऐसे नहीं कहना हम क्या करें। नहीं, कई बार जिसको गुस्से का आदत होती है वो कहेंगे क्या करें, गुस्सा आ जाता है, मेरे मन में कुछ नहीं है, मुझे नहीं चाहना थी कि आपको दुख दूं, परंतु गुस्सा आ गया। हाँ, इसलिए कई बार देखा है, कई विदेश में तो हमने देखा है बहुत लोग इस कारण डाइवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं, पति पत्नी झगड़ते रहते हैं गुस्से के कारण, मैं तेरा मेरा ये वो, उसमें लड़ते झगड़ते रहते हैं। भारत में तो डाइवोर्स कम होता है क्योंकि समाज का डर रहता है, और माताएं कमाती नहीं है तो सोचेंगी डाइवोर्स लेंगे तो खिलाएंगा पिलाएंगा कौन, क्योंकि माँ बाप भी कहेंगे तुम अपने ससुराल में बली। तो कितना भी आपस में मन मुटाव होगा चलाते रहते हैं, परंतु विदेश में तो मतभेद में आए तो कहेगा तुम अपने रास्ते पर चलो हम अपने रास्ते पर चलें। और गुस्से वाले का गुस्सा नहीं ज्यादा सहन करेंगे। हाँ, कोई मारपीट करता है तो बच्चा भी, 7 साल का बच्चा भी फौरन पुलिस में फोन करेगा कि देखो मेरे माँ बाप मुझे मारा है, निशाना दिखाएगा कि यहाँ हमको मारा है। तो क्या है कि वहां तो कायदे बहुत कड़े हैं, इसलिए सोच सोच के लोग कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ तो क्या है, समाज की डर के वश लोग चलते रहते चलाते रहते हैं। तो ये हुआ पाप कर्म। चाहे कुछ भी बुद्धि में भल हमारा भावना अच्छी है, परंतु यदि मन वचन कर्म से हमने किसी को दुख दिया, हमको दुख मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे पाप कर्म। मन वचन कर्म से किसी को सुख दिया, क्या है कि कई बार ऐसे हैं कि आपका फ्रेंड बीमार है, बहुत दूर रहते हैं, आप क्या करेंगे, फोन करेंगे या पत्र लिखेंगे या टेलीग्राम भेजेंगे या ईमेल भेजेंगे कि हमारी आपके लिए शुभ भावना है, प्रार्थना करेंगे। तो क्या होगा, ये मनसा से हम उनको सुख देने का प्रयास करते हैं, तो ये भी सत्कर्म होगा। कई है वचन द्वारा करेंगे, फोन द्वारा बात की, क्या करूं कैसे करूं, आपको कोई मदद की जरूरत है, सिर्फ फोन किया मदद की जरूरत है, तो क्या होगा, वो खुश होगा, तो उसको सुख दिया खुशी दी, वो हमारा पुण्य कर्म हो गया। और फिर कोई धन से मदद करेंगे, हाँ, कि किसी की स्थिति अच्छी नहीं है, फ्रेंड्स है, रिश्तेदार है, हाँ, उसकी दवाई करेगा, उनको हॉस्पिटल में ले जाएगा, डॉक्टरों को दिखाएगा, तो ये या तो शरीर से ले जाएगा या तो धन से मदद करते हैं। तो सबसे ज्यादा पुण्य है कर्म द्वारा कुछ करते हैं, मनसा वाचा या कर्मणा, हम किसी को सुख दे सकते हैं, उसको हम कहेंगे पुण्य कर्म। परंतु यदि हम परिवार के प्रति करते हैं अच्छे कर्म, ये भी अच्छे कर्म परिवार के प्रति हो सकता है ना, कि आपकी जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की ठीक रीति से संभाल करना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसकी बीमारी में उसकी दवाई दरमल करना, तो इसको कहेंगे सत्कर्म, कि उसके बच्चे के लिए आपने सब कुछ जो कुछ हो सका वो किया, उसको पुण्य कर्म नहीं कहेंगे। परिवार में पुण्य कर्म नहीं होता है, ये तो आपने जिम्मेवारी निभाई, तो उसको सत्कर्म कहेंगे। अकर्म क्या है, कि जिस कर्म का न हमको फल मिलता है न सजा मिलती है, क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो उसकी सजा मिलेंगी। किसी को मारेंगे, वो हमको सामने मारेगा, सजा मिल गई उसी समय। परंतु कई बार ऐसे होता है कि उसी समय हम रिएक्ट नहीं करते हैं, परंतु बाद में रिएक्ट करते हैं। परंतु इसी जन्म में करते हैं तो मालूम होता है ना, कि मैंने फलाने को उस समय दुख दिया था, अभी वो हमको गाली देते हैं या ये हमको हमारा वैर लेते हैं। इस जन्म में हुआ तो मालूम पड़ गया, परंतु दूसरे जन्म में लेता है तो मालूम नहीं पड़ता ना। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, हमारे बच्चे ही ऐसे नालायक बन जाते हैं, या तो ड्रग्स लेते हैं, या तो जुआ खेलते हैं, कर्जा करके आते हैं, फिर माँ बाप को कर्जा भरना पड़ता है। ये क्या हुआ? पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब। या बच्चों के कारण बहुत खर्चा करना पड़ता है बीमारी के कारण, तो ये भी कोई हिसाब किताब है कर्मों का। जिसने लिया है उसको देना पड़ता है उसके निमित्त। कई बार कई है कहते हैं कि हमारे नसीब में बच्चा नहीं है। ऐसे होता है, कईयों को बच्चा नहीं होता है। क्या कारण? किसी को हमने किसी से लिया नहीं है तो वो लेने वाला आता नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब है ना। बच्चों को आपका कितना समय शक्ति धन देना पड़ता है ना, ये रिटर्न दे रहे हैं हम। तो यदि हमारा किसी से हिसाब किताब नहीं है तो लेने वाला आएगा नहीं, बच्चा आएगा नहीं। तो अकर्म ये है कि जिसका हमको न पुण्य का खाता बनता है न पाप का खाता बनता है। तो ये आप काल चक्र कल समझेंगे, उसमें समझाएंगे कि कैसे सत्युग त्रेता में सब सुखी है, तो किसी को दान पुण्य नहीं करना पड़ता। आज सबके पास धन है, अच्छी तंदुरुस्ती है, सबके पास प्रेम का संबंध है, तो क्या होगा? कोई किसी को दुख नहीं देगा, न कोई किसी को दान पुण्य करेगा। तो इसलिए सत्युग त्रेता में हमारे जो कर्म होते हैं ना, उसको हम कहेंगे अकर्म, उसका कोई फल नहीं होता। द्वापर से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आज आप देखेंगे आपके जीवन में और आपके माँ बाप के जीवन में और संस्कार में और आपके बच्चे, आपने कम से कम तीन पीढ़ी तो देखी है, मेजोरिटी ने माँ बाप और बच्चों की और अपनी, कितना फर्क लगता है। आजकल के बच्चे अक्लवान तो बहुत है, परंतु कई बच्चे छोटेपन से गुस्से वाले, बचपन से जन्म से बोलना भी पीछे सीखते हैं, परंतु गुस्सा बहुत। तो क्या है कि आजकल के जैसे जैसे दुनिया तमो प्रधान बनती जाती है, जो जो बच्चे नए जन्मते हैं, नई जनरेशन है, वो बहुत धीरे धीरे एक तो विकारी बनती जाती है, काम क्रोध लोभ। छोटे छोटे बच्चे भी लव 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 करना शुरू करते हैं। और आज आप सुनेंगे कई है छोटे बच्चे भी एक दो को मार देते हैं, गोली मार देते हैं। स्कूलों में, अमेरिका में तो आप सुनेंगे तो कई बच्चे स्कूल में बंदूक लेके जाते हैं, चला लेते हैं, मार देते हैं। तो क्या है कि आजकल के बच्चे भी ऐसे तमो प्रधान हो गए। तो क्या है कि हमारे माँ बाप भल उनके पास इतना धन दौलत नहीं था, टीवी नहीं था, उनके पास सब सुख के ये साधन नहीं थे, साइंस के टेलीफोन नहीं था। हमारे बचपन में भी हमने देखा घर में, कई घरों में टेलीफोन नहीं था, और आज तो एक घर में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल। तो क्या है, कितनी दुनिया में परिवर्तन आ गया है। तो ये क्या है, समाज बदलता जाता है, दिन प्रतिदिन कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो कई शास्त्रों में बताया है कि कलयुग में क्या होगा, अनाज पुड़ियों में बेचा जाएगा। आप लोग खरीदारी करने जाते हैं, कितना खरीदते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ज्यादा से ज्यादा ऐसा होता है ना। और आपके बचपन में या आपके माँ बाप के जमाने में क्या करते थे, बोरी की बोरी खरीदते थे ना, मन के मन। तो अनाज पुड़ियों में अभी बेचा जाता है। कन्याएं वर मांगेंगी, छोटी छोटी कन्याएं अपना वर पसंद कर लेंगी और नक्की करेंगे किसके साथ शादी करनी। बाल के फैशन बढ़ जाएंगे, खास विशेष विदेश में देखो, गहना नहीं पहनेंगे परंतु मास में एक दो बार हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे, कुछ शादी है, फंक्शन है, हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे। और हर एक डाई करेगा, कलर करेगा बाल को, मेकअप करेगा, ये जैसे कि उनका श्रृंगार हो गया। अगले जमाने में क्या था, हीरे सोना उसका जवाहरात पहनते थे, अभी बालों की फैशन बढ़ गई। और धर्म के नाम पर बलिदान, अत्याचार, किसी को चाहिए बच्चा, बलिदान देंगे दूसरे का बच्चे का। या नवरात्रि में, आज भी नेपाल में देखो, नवरात्रि में देवियों को कितने बकरे और पाड़े, भैंस या बछड़े उनका बलिदान देते धर्म के नाम पर कि देवी खुश होंगी। ऐसे देवियां खुश होंगी क्या? जीव प्राणी का बलिदान देने से खुश होंगी क्या देवी? तो धर्म के नाम पर अत्याचार। फिर आप देखेंगे कि राजनीति में आया राम गया राम, आजकल तो ये शब्द कम बोलते हैं, आजकल तो अपना पक्ष बदली किया, बाजी पलटी ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं। तो उनको वो पक्ष के प्रिंसिपल से प्यार नहीं है, सीट से प्यार है। तो जहां सीट मिलेंगी, कांग्रेस से सीट ना मिली तो बीजेपी में दाखिल हो जाएंगे, बीजेपी में नहीं हुआ तो सोशल पार्टी में दाखिल हो जाएंगे, जहां सीट मिली वहां के उम्मीदवार बन जाएंगे। तो इसलिए, और व्यापार में सदाचार नहीं, ठगी, झूठ बोलना, व्यापारी लोग क्या करेंगे, कितने प्रकार के चोपड़े रखेंगे गवर्नमेंट को दिखाने के लिए एक, अपने पार्टनर को दिखाने के लिए दूसरा, और अपने पास तीसरा, ऐसे ठगी। पार्टनर से भी ठगी तो गवर्नमेंट से भी ठगी, इतने तक कि बच्चे भी बाप को ठगी करते हैं और धन के लिए बच्चे भी माँ बाप का खून करते हैं। हमने तो कई ऐसे सुने हैं जहाँ माँ बाप बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, लड़का उसको जंगल में ले जाके मार के वहीं उसको फेंक दिया। क्यों? प्रॉपर्टी चाहिए थी। एक जवान बच्चे को उसकी माँ ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की बात करती हूँ, माँ ने कहा इस लड़की के साथ तुम शादी करेंगे तो मैं तुमको वर्षा नहीं देंगी। तो उसने क्या किया, माँ बाप और बहन तीनों का खून कर लिया। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप का खून करेंगे, पति पत्नी का खून करेगा, पत्नी पति का खून करेंगी। झगड़ा हो गया, अभी अभी कुछ अमेरिका में इंसिडेंस हुआ, शादी को एक हफ्ता भी नहीं होगा, लड़की अपने पति को लेके गई और पहाड़ी से उसको गिरा दिया। तो क्या है कि आजकल जैसे सच्चा प्यार नहीं है, जैसे वो गीत था ना पुराने जमाने में, बाप भला नहीं भला सबसे भला रुपया, ऐसे देखा गया है कि सबको रुपये से प्यार है और किसी से प्यार नहीं, या तो चमड़ी से प्यार है। जब तक पति पत्नी खूबसूरत है तब तक एक दो आप हमारे हैं, यदि पत्नी को कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ मार लगा, कुछ चेहरा विकृत हो गया, छुट्टी। तो ये है कि आज के जमाने में दुष्कर्म करने में लोग जरा भी हिचकते नहीं। इतने अभी तो ऐसे ऐसे बनाव सुनते हैं कि ड्राइवर ने स्कूल में ले जाने वाले बच्ची, 4-5 साल वाली बच्ची के ऊपर अत्याचार व्यभिचार करते हैं, 3-4 साल की बच्चियों के ऊपर भी व्यभिचार। तो क्या है कि समय बहुत अभी आप देख रहे हैं नाजुक है, बाप भी अपनी लड़की के ऊपर व्यभिचार करता। तो इतने इसके लिए हम देखते हैं कि समाज इतना खराब हो गया, इतने उनके संस्कार हो गए पतित जो पाप कर्म की गठड़ी भरती जाती है। तो जैसे कहा था ना, जब पाप का घड़ा भरता है तो क्या होगा, फूटेगा। जैसे बताया था कि कीचक का कृष्ण को गाली देता था तो कहा जब उसकी 100 गालियां पूरी होंगी वो उसको मार देगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि भगवान को भी गाली देने वाले, चलो दूसरों को तो गाली देने वाले छोड़ो, पर भगवान को भी गाली देने वाले हैं लोग। तो ये हुए सारे अलग अलग प्रकार के कर्म, और एक है निष्काम कर्म। गीता में कहते हैं कि आप निष्काम कर्म करेंगे, कोई कर्म के फल की आशा नहीं रखेंगे तो आपको ज्यादा फल मिलेगा। तो वास्तव में वो निष्काम तो नहीं हुआ ना, मालूम है कि फल की आशा नहीं रखेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा, तो वो बुद्धि में है इसलिए वो कर्म। मनुष्य आत्मा तो निष्काम कर्म नहीं कर सकता, बाकी हाँ भगवान जो दया का सागर है उसको बच्चों से क्या चाहिए, चाहिए कुछ न, उनको निराकार है न उसको खाना है न पीना है न पहनना है न मकान चाहिए, कुछ भी आशा नहीं है, परंतु हम बच्चों को देता रहता है। तो उसको कहेंगे हम परमात्मा का बेहद का प्यार और निष्काम कर्म। बाकी मनुष्यों का तो जो भी कर्म करेंगे उसका फल जरूर मिलना है। अब प्रश्न उठता है कि फल की भोगना कब मिलती है, कैसे मिलती है, और बुरे कर्म किए हैं उसका हम कैसे पाप कर्म का विनाश करें। हाँ, तो क्या है कि पाप कर्म जो करते हैं ना, वो जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार उसको फल मिलेगा। यदि हमने किसी को मारा है, मतलब हमने अपने शरीर को यूज किया, उसके शरीर को कुछ तकलीफ दी, तो रिजल्ट क्या होगा? नेचुरली हमारे शरीर के ऊपर कुछ न कुछ तकलीफ होंगी, बीमारी होंगी, या कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा शरीर को। तो इसी रीत से क्या होता है, जो कर्मों की गति है कहते हैं न्यारी है, उसकी गति न्यारी है। तो हम कह नहीं सकते हैं किस कर्म का कब फल मिलेगा। जैसे आप देखते हैं अनाज बोएंगे, गेहूं या चावल की फसल डालेंगे, तो कितना समय में आपको गेहूं चावल मिलेगा? कुछ मास में मिल जाएगा ना, उसकी फसल कुछ मास में ही मिल जाएंगी। थोड़े अनाज के बीज डाले, गेहूं के या चावल के या मकाई के या जो भी, और हमें कितना मिल जाता है। परंतु वो कब डालना चाहिए बीज? सीजन में। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जमीन ऐसी तैयार करनी होगी, उसके अंदर फिर पानी देना होगा, उसको फिर फर्टिलाइजर खाद देनी पड़ेगी, तो क्या होगा, ठीक बनेगा ना। उसको बारिश भी ऐसी चाहिए, धूप भी ऐसी चाहिए, हर एक को अलग अलग प्रकार की चाहिए। और जब सब क्लाइमेट वगैरह ठीक होंगी तो उसका रिजल्ट भी ठीक होगा। यदि बिना मौसम के बारिश हो गई तो फसल खराब भी हो जाती है, ठीक है ना, या कभी अनावर्षा होंगी तो भी फसल खराब हो जाती है। तो इसी रीत से कर्म जो हम करते हैं उसका फल है, कभी थोड़े समय में मिलेगा, कभी जैसे अभी आम का बीज बोया, कलम लगाई या बीज बोया, कितना टाइम लगेगा? बहुत साल लग जाते हैं। तो संभालने वाले को इतनी संभाल, इतना साल करनी पड़े, और साथ साथ धीरज रखनी पड़े ना, रोज जाकर देखे कि उसमें आम निकला या नहीं, फल मिलता है या नहीं, तो क्या कहेंगे हम? कहेंगे इसको कुछ अक्ल नहीं है कि आम का फल इतना जल्दी थोड़ी निकलेगा, उसके लिए तो बरसों तक इंतजार करना पड़ेगा। इसी रीत से कर्म का फल हमें कभी उसी समय मिल जाता है, हमने गाली दी उसने गाली दी, काम पूरा हुआ, हमने उसको मारा उसने हमको मारा, काम पूरा हो गया, उसी समय हिसाब किताब पूरा हुआ। पर कई बार ऐसे होता है, जैसे हमने कहा हाँ कि आपके बॉस ने आपको कुछ कहा तो आपको तो सुनना ही पड़े, आप उसी समय तो बोलेंगे नहीं, परंतु मन में तो गुस्सा या वैर रहेगा। फिर जब चांस मिले तो आप किसी न किसी रीत से बदला ले लेते हैं। तो कोई कोई का तो इसी का इसी जन्म में हो जाता है, कोई कोई का क्या होगा, दूसरे जन्म में। क्योंकि आज है, जैसे हमने कहा, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, कोई बहुत स्वरूपवान है, कोई इतना खूबसूरत नहीं है, कोई तो समझो नॉर्मल बॉडी है, किसी कोई का विकलांग बच्चा होता है जन्म से ही, या तो उनका एक पांव का एक अंगुली कम होंगी या हाथ की अंगुली कम होंगी या हाथ टेढ़ा होगा या हार्ट लेफ्ट की बजाय राइट के ऊपर होगा या साइज ठीक नहीं होंगी या कईयों का जन्म से ही होस्ट यहाँ टूटा हुआ होता है, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप्स कहते हैं, लेफ्ट तो ये विकलांग हम कहेंगे। क्या कारण? ये भी कोई पूर्व जन्म का हमारा हिसाब किताब। इस कारण शरीर की बीमारी होगी या मन की चिंता होगी या मतलब धन की गड़बड़ी होगी या संबंध में गड़बड़ी होगी कि जो माँ बाप से प्यार की अपेक्षा करते थे प्यार नहीं मिला, तो ये भी कोई हिसाब किताब है ना। हाँ, तो ये दूसरे जन्म में मिलेगा क्योंकि कई बार हमने कईयों से सुना, पता नहीं किस जन्म का वैरी हमारे घर में आया है, बच्चा है दुख देने वाला है, तो कहता है पता नहीं अगले जन्म का हमने कोई हमारा दुश्मन हमारे घर में आया है। तो इसी रीत से हम देखते हैं कि जो जन्म होता है, जिसका जहां जन्म है वो कर्म के हिसाब किताब अनुसार होता है और उसी अनुसार सुख या दुख उन्हों से मिलता है। अब समझो आज हम दुखी हैं, सुखी बनने की सबकी चाहना है, तो क्या करना चाहिए? पिछले पाप कर्म का फल है दुख, चाहे तन का, मन का, धन का, संबंध का, जो भी है, उसको कैसे खत्म करें? तो उसके उपाय ये है कि जितना हम दान पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हमारा पिछला खाता चुकतु होता जाएगा। क्योंकि हमको मालूम नहीं हमने किसको दुख दिया है क्या है, परंतु हम सबको यदि सुख देते जाएंगे तो क्या होगा? सुखी बनेंगे। इसलिए कोशिश करनी है हमको सबको सुख देना। दूसरा है कि हम योग बल से ये चुक्तु कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं योग अग्नि है। अग्नि में कितना भी किचड़ा डालो क्या होगा? भस्म हो जाएगा। इसी रीत से हम जितना पावरफुल योग में रहेंगे हमारे पिछले पाप कर्म विनाश होंगे। ये जैसे हम सजा देते हैं अपने आप को ना, योग में बैठना माना क्या हुआ? अपने को सजा दी ना, किसी से बोलना नहीं, किसी से मिलना नहीं, इतना समय आधा घंटा हम शांति में बैठे रहें, सब अपना नियमों का पालन करते रहें, तो ये क्या है? एक हमने अपने आप को सूक्ष्म सजा दी, परमात्मा से शक्ति ली कि हम औरों को हम प्यार देते रहे, सुख देते रहे, शांति देते रहे, उन सागर से हम जितना खजाना लेंगे और औरों को देते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा फायदा ही होगा। तो इसलिए अभी हमको ये करना है, ध्यान में रखना है, जितना हो सके मन वचन कर्म से, तन मन धन से हम औरों को सुख देते जाए, किसी को दुख न देंगे, नहीं तो हमको दुखी बनना होगा। और योग द्वारा अपना हिसाब किताब चुकतु करना है। और सजा होंगी ना, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम दूसरों को दोष देते हैं ना। हाँ, मिसाल के तौर पर आज किसी लड़की की माँ बाप ने किसी लड़के के साथ शादी कराए, परंतु ससुराल में सुख नहीं मिला उस लड़की को, तो उस लड़की क्या कहेंगे, माँ बाप को दोष देंगे ना, मैच मैरिज में माँ बाप को दोष देंगे कि इसने हमको यहाँ कहाँ डाली। परंतु जहां भी शादी हुई उसका कोई हिसाब किताब था। इसलिए जो समझदार आत्मा है ना, वो किसी को दोष नहीं देंगे, अपने कर्मों को दोष देंगे, अपने भाग्य को दोष देंगे। तो क्या है कि ये भोगना हो जाती है, कोई तन से बीमार रहता है, कोई को मन की चिंता रहती है, किसी के संबंध में सुख नहीं है, किसी के पास धन का सुख नहीं है, तो ये क्या है, हम पिछले कर्मों का हिसाब किताब चुकते रहे। वो जितना हम ईश्वर की याद में रहेंगे और आत्मभान में रहेंगे तो क्या होगा, इतना कष्ट नहीं महसूस होगा। देखो जैसे आज हम देखते हैं कोई पैदल चलता है, जब थक जाते हैं तो क्या कहेंगे, यदि खुशी खुशी में जाएंगे तो क्या होंगे, थकावट कम होंगी ना। हाँ मुझे याद है नाविक है ना, पहले क्या जमाने में क्या करते थे ना, जब बोट चलाते थे तो गीत गाते रहते हैं, हैया हो हैया हैया हो हैया करके गीत भी गाते रहे और चलाते भी रहे नाव को, तो थकावट नहीं लगती थी। या तो कोई बड़े बड़े लकड़ी वगैरह जो हार्ड लेबर का काम करते थे, खुशी खुशी से गीत गाते गाते करते हैं तो इतना दुख नहीं होता, इतना शरीर में कष्ट नहीं महसूस होता। इसी रीत से जितना हम अशरीरी बनकर ईश्वर की याद में खुश रहेंगे तो शरीर कैसा भी बीमार है वो शरीर अपना काम करते रहे, हमारा मन तो ईश्वर की लगन में लगा रहे तो इतना दुख नहीं होगा। तो इसलिए हम कर्मों के ऊपर भी ध्यान देवे, अभी अभी समय है सत्कर्म का बीज बोने का, क्योंकि आज हमारे सामने कई दुखी आत्माएं हैं, तो हमारे पास जो मन की शांति है हम उनको शांति का दान देवें, हम उसको हंस के भी बात करें, उनके सामने हर्षित मुख से मिले, किसी को कोई आप जैसे भी मिलते हैं, कैसे हो, खुश हो, क्या है, पूछो तो भी उसको आनंद आता है ना, उसमें पैसा नहीं देना पड़ता आपको। चेहरा हर्षित रखकर किसी को मिलने में आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। तो ऐसा जैसे जैसे हम उसी रीत से करते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप भी खुश रहेंगे औरों को भी खुशी देंगे। तो इसलिए अभी करने का टाइम है, किसी को धन से मदद करो, किसी को तन से मदद करो, किसी को मन से शांति दो, प्रार्थना करो। तो ये है कि हम जितना अभी कर सकते हैं, तो अभी सीजन है सत्कर्म का बीज बोने की, क्योंकि परमात्मा से हम शक्ति भी ले सकते हैं, औरों को दे भी सकते हैं। तो इसलिए जितना पुण्य कर्म का खाता जमा करेंगे तो हम को दुआएं भी मिलेंगी, ज्ञान का खाता खजाना जमा करेंगे तो हर बात को समझेंगे, क्या क्यों का प्रश्न होकर हम दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए अभी खजाना जमा करने का समय है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी समय व्यर्थ नहीं गवाओ, अपना संकल्प व्यर्थ नहीं गवाओ, अपना बोल भी जितना चाहिए उतना बोलो। कईयों को बहुत बोल बोल करने की आदत होती है ना, और एक ही बात रिपीट करते रहते हैं, अपने दुख की कहानी सबको सुनाते रहेंगे। अभी वो आपकी कहानी सुनकर क्या करेंगे, कोई मदद करेंगे आपको? जो मदद करने वाला है उसको जरूर सुनाओ, पर सबको सुनाकर आप सबको दुखी करेंगे ना। इसलिए जो भी बातें हैं भगवान को सुना दो, या जहां से आपको कुछ शक्ति मिले उनको सुना, जिधर उधर नहीं बता। तो इसलिए अपने संकल्प पर ध्यान रखना है, अपने बोल पर ध्यान रखना है कि किसी को दुख ना हो। हमारे पुराने स्वभाव संस्कार के वश हम किसी को दुख ना देवे। अपने कर्मों पर ध्यान रखना है कि हम अच्छे कर्म करें, दान पुण्य करें। तो जितना जितना हम यहाँ पुण्य का खाता जमा करते जाएंगे वो हमारा साथ में आएगा। हम जब शरीर छोड़ेंगे साथ में क्या आएगा? संस्कार और कर्म। बाकी शरीर यहाँ रह जाएंगे, संबंधी यहाँ रह जाएंगे, वैभव सब यहाँ रह जाएगा, बाकी हमारे साथ आएगा संस्कार और कर्म। इसके लिए भगवान कहते हैं इस समय अपने संस्कारों को परिवर्तित करो। कोई जन्मते हमारे जो संस्कार है वो नहीं है अभी ना? कई है जन्मते है, बचपन में बहुत चंचल होते फिर बहुत सयाने और गंभीर बन जाते हैं। कोई है बचपन में अच्छे हैं पर संग दोष में आकर बुरे कर्म करने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते एक तो संग दोष पर ध्यान रखो, दूसरा अपने स्वभाव संस्कार को बदलो। और बदल सकते हैं। हमने तो कईयों को देखा है एकदम गुस्से वाले अभी शांत हो गए, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गए। तो नेचुरली है हम जितना अपने पर टेंशन रखकर अपने को परिवर्तन करेंगे, नहीं तो क्या होता है आजकल हमारा स्वभाव क्या है, औरों के ऊपर नजर जल्दी जाती है ना, कहीं ये चाहे तो वैसा है, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है, इसको ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते ये आपको जज नहीं बनना है, औरों का जजमेंट नहीं करना है, अपने को देखो, अपनी जजमेंट करो, अपने को चेक करो कि हमारे में क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, उसको निकालो। और अपने हम वकील बन जाते हैं ना, आज किसी ने कुछ कहा तो कहेंगे क्या करें, परिस्थिति ऐसी है इसलिए तो हमको गुस्सा करना पड़ा ना, परिस्थिति ऐसी है इसलिए तो चिंता है ना, हमारा बॉस ऐसा है इसलिए टेंशन है ना। परंतु भगवान कहते हैं अभी रिलैक्स रहने सीखो, योग करो, अपने आप को रिलैक्स रखो। क्यों मैं करूं करके चिंता करते हैं ना, आज ये ही है ना, मैं करूं ऐसा होता है। अरे भगवान के ऊपर छोड़ो ना, भगवान के बच्चे हो ना, भगवान के ऊपर छोड़ो तो भगवान करेगा ना, वो तो सर्वशक्तिवान है ना। तो इसलिए जितना जितना ईश्वर के बच्चे बनकर हल्के रहेंगे, आत्म स्वरूप में रहकर हल्के रहेंगे, तो हल्की व्यक्ति क्या है, उड़ सकती है, भारी है बैठ जाएंगे। इसलिए अपने आप को आत्मा समझो, आत्मा कितना छोटा बिंदु है, हल्का बन जाओ और परमात्मा को याद करो, प्यार से याद करो, तो क्या होगा, परमात्मा से शक्ति मिलती जाएंगी और उस शक्ति से जो भी परिस्थिति आएंगी उसका सामना कर सकेंगे। फिर कमजोरी के शब्द नहीं बोलेंगे, क्या करूं गुस्सा आ जाता है ना, नहीं। तो इस रीत से अपने ऊपर जितना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, योग करेंगे, तो इससे क्या होगा, आप परिवर्तित जरूर होंगे। इसलिए अपना स्वभाव संस्कार को दोष ना दो, परंतु उसको बदलने का पुरुषार्थ करो। तो ये लक्ष्य रखो कि राजयोग के द्वारा हमको पावन बनना है और पुण्य कर्म करने हैं, सत्कर्म करने हैं। तो बाकी फिर रात को 9 बजे आपका वीडियो दिखाएंगे, तो अभी 2 मिनट याद में बैठ के पूरा करें। परंतु एक बात हम आपको बता देवे, क्योंकि आज आप में से कोई कोई तो सवेरे 4 बजे के अमृत वेला में यहाँ आए थे, कल रात को आपको बताया गया था कि आप 4:15 बजे आना, 4 बजे उठना, 4:15 आना। परंतु जो भी हो सके कोशिश करो 3:30-4 बजे उठकर 4 बजे आओ। और क्या है, भाई लोग इस तरफ बैठते हैं, बहनें इस तरफ बैठती है, तो ये कोशिश करके बहनें इस तरफ से दरवाजे से आवे, भाई लोग उस तरफ से दरवाजे से आए, तो क्या है कि आपको क्रॉस करके नहीं जाना पड़े अमृत वेले, और प्यार से याद में बैठ जाना। और आपने आज सिखाऊंगा ना कैसे योग करना है आदि आदि, तो योग में चाहे आंखें खुली रखो चाहे बंद रखो, परंतु योग में एकाग्र होकर रहना, क्योंकि यहाँ वायुमंडल अच्छा है, संग अच्छा है, तो आपको उस बात की सहज हो जाएंगी, योग में सहज हो जाएगा। जो भी उठ सके आवे जरूर, बाकी तो जब भी योग का सेशन है करके योग की अनुभूति करना। ओके, ओम शांति। अभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे।